भूमिका। हिंदी में साहित्यिक वाद एवं प्रवृत्तियों का परिचय अनेक पुस्तकों में सुलभ है। सर्वत्र वादों की संख्या गिनाने में होड़ सी लगी हुई है। भोग्यता प्रदर्शित करने के लिए जैसे सबसे खुला मैदान यही दिखाई पड़ रहा है। कोशिश यही है कि किसी पाश्चात्यवाद का नाम छूट न जाए। कुछ उत्साही तो अपनी मौलिक खोज प्रमाणित करने के लिए हर यूरोपीय वाद के लिए हिंदी से कुछ न कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर देते हैं। इस प्रकार हिंदी में धड़ल्ले से अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, प्रतीकवाद, प्रभाववाद, बिंबवाद, भविष्यवाद, समाजवादी यथार्थवाद आदि की चर्चा हो रही है। गोया ये सभी प्रवृत्तियाँ हिंदी साहित्य की हैं अथवा हिंदी में भी प्रचलित रही हैं। कहना न होगा कि ज्ञानवर्धन के इन उत्साही प्रयत्नों से आधुनिक हिंदी साहित्य की अपनी वास्तविक प्रवृत्ति के बारे में काफ़ी भ्रम फैल रहा है। वैसे किसी अन्य साहित्य में प्रचलित प्रवृत्ति अथवा बात का परिचय हिंदी पाठक को देना बुरा नहीं है, और हिंदी के किसी साहित्यिक आंदोलन के मूल स्रोतों का परिचय देने के लिए संभावना के रूप में यदि यूरोप की किसी बात की चर्चा की जाए तो उस पर भी शायद ही किसी को आपत्ति हो। किंतु हिंदी में अनेक प्रचलित अप्रचलित देशी विदेशी वादों को अंधाधुंध चर्चा का निवारण होना चाहिए। निसंदेह यह प्रवृत्ति व्यावसायिक पुस्तकों में विशेष रूप से उभर कर आई है, किंतु संदर्भ के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले सम्मानित साहित्य कोषों ने भी इस भ्रम के प्रसार में काफ़ी योग दिया है। किसी एक साहित्य में प्रचलित वाद के एक नकलची अन्यत्र भी मिल सकते हैं, किंतु इससे किसी साहित्य में उस वाद का अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता। विभिन्न साहित्यिक वादों के उत्थान और पतन के इतिहास से परिचित अध्येता जानते हैं कि हर वाद अपने साहित्य एवं समाज के विशेष परिवेश से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और उसके आंदोलन के पीछे एक इतिहास है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी प्रतीकवाद और अंग्रेजी बिंबवाद अपने अपने निश्चित देशकाल से संबद्ध है, इसलिए हिंदी में इन वादों की चर्चा करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है कि अपने यहाँ ये वाद किसी साहित्यिक आंदोलन के रूप में चले या नहीं, और कुल मिलाकर इन्होंने हमारी साहित्यिक परंपरा में क्या योगदान दिया। कहना न होगा कि हिंदी में प्रायः इस विवेक को पीठ ही दी गई है। पिछले युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समकालीन छायावादी एवं रहस्यवादी काव्य प्रवृत्तियों की समीक्षा करते हुए क्रोचे के अभिव्यंजनावाद, पश्चिमी कलावाद, फ्रांसीसी प्रतीकवाद आदि की विस्तृत आलोचना की थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि पाश्चात्य साहित्य की ये पतनोन्मुख प्रवृत्तियाँ हिंदी साहित्य पर भी दूषित प्रभाव डाल रही हैं। फिर क्या था, वाद के लेखकों को कलम चलाने के लिए एक राजमार्ग मिल गया और इन वादों पर इस तरह लिखा जाने लगा जैसे कोई उनके घर की चीज हो। हिंदी में अभिव्यंजनावाद को इतनी चर्चा देखकर कभी कभी तो भ्रम होने लगता है कि क्रोचे इटली में नहीं बल्कि भारत में पैदा हुआ था। वसुधैव कुटुंबकम का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। शुक्ल जी ने क्रोचे की कड़ी आलोचना की तो पीछे हिंदी के 10 अध्यापक क्रोचे के समर्थन में खड़े हो गए। ऐसे क्रोचे के साथ सहानुभूति दिखाना अत्यंत आवश्यक हो उठा हो। यह भी अतिथि देवो भव के भारतीय आदर्श का एक उदाहरण है। किसी ने इस बात का पता लगाने का कष्ट नहीं उठाया कि स्वयं यूरोपीय साहित्य में रचना के क्षेत्र में अभिव्यंजनावाद का कितना असर था। एक और शिप्ले का साहित्य कोश है जिसमें क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर यह टिप्पणी है कि साहित्य रचना पर इसका प्रभाव न्यूनतम है। सिर्फ 2-3 अभिव्यंजनावादी नाटकों को छोड़कर और कुछ नहीं लिखा गया। दूसरी ओर हिंदी साहित्य कोश जिसमें इस प्रकार के किसी तथ्य का उल्लेख नहीं है, हिंदी पर पाश्चात्य प्रभाव का यह भी एक उदाहरण है। अभिव्यंजनावाद के साथ ही शुक्ल जी ने पहले से सावधान करने के लिए सन 1934 के इंदौर वाले भाषण में ही संवेदनावाद एवं मूर्ति विधानवाद की भी संक्षिप्त किंतु सारगर्भित आलोचना की थी, किंतु वर्षों तक आलोचकों का ध्यान उनकी ओर गया ही नहीं। यहाँ तक कि हिंदी में जब यत्र तत्र इन वादों के प्रभाव काव्य रचना में प्रकट होने लगे तब भी उनको पहचानने वाले दृष्टि नहीं दिखाई पड़ी। आज भी इन वादों पर चर्चा होती है तो उसका रूप बहुत कुछ हवाई ही होता है। जैसा इसके पहले हिंदी में कभी इनकी चर्चा हुई ही ना हो। अपनी साहित्य परंपरा के ज्ञान का यह भी एक उदाहरण है। इससे प्रकट है कि हिंदी के बहुत से साहित्यिक अपनी परंपरा से अधिक यूरोपीय साहित्य की सूचना रखते हैं। हिंदी में वाद विस्तार की विडंबना उस समय चरम सीमा पर दिखाई पड़ती है जब हम समाजवादी यथार्थवाद संबंधी चर्चा पर पहुंचते हैं। उत्साही लेखकों ने हिंदी उपन्यासों में समाजवादी यथार्थवाद की एक धारा निरूपित कर दी है, क्योंकि हिंदी के कुछ उपन्यासों के लेखक कम्युनिस्ट हैं। समाजवादी यथार्थवाद के लिए प्रयत्न करने वाले रूसी उपन्यासकारों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में समाजवाद की स्थापना होने से पहले ही साहित्य में समाजवादी यथार्थवाद की नींव पड़ गई। जहाँ रूस में समाजवाद की स्थापना करने के वर्षों बाद समाजवादी समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए समाजवादी यथार्थवाद के साहित्य सिद्धांत का निर्माण हुआ, वहाँ भारत में अभी से साहित्य के अंदर भविष्य के लिए सिद्धांतों और रचनाओं का निर्माण हो रहा है। भारतीय दूरदर्शिता का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। संक्षेप में इन वादों की चर्चा से स्पष्ट है कि हिंदी आलोचना में आज भी हमारे यहाँ सब कुछ है वाली प्रवृत्ति काम कर रही है। जिस प्रकार पिछले युग में किसी यूरोपीय विचारधारा को एक सांस में अभारतीय कहकर विरोध किया जाता था और दूसरी सांस में उसे अपने यहाँ पहले ही मौजूद बतलाकर आत्मगौरव बढ़ाने की कोशिश की जाती थी, उसी प्रकार अंतर्विरोध का हास्यास्पद रूप आज भी दिखाई पड़ता है। वास्तविकता यह है कि हिंदी में साहित्य रचना के क्षेत्र में जितने वाद नहीं हैं उनसे कहीं अधिक आलोचना में पढ़ाए जा रहे हैं। जितनी जल्दी यह बकवास बंद हो उतना ही अच्छा हो। साहित्य का कल्याण इसी में है। कहना न होगा कि वादों की चर्चा में प्रसंगानुकूलता के बोध की आज कितनी आवश्यकता है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद चार ही प्रवृत्तियां निश्चित रूप से इतिहास सम्मत हैं, जिन्हें वाद के रूप में प्रचलन की मान्यता प्राप्त है। निसंदेह इन चारों साहित्यिक प्रवृत्तियों के अंदर आधुनिक युग का संपूर्ण हिंदी साहित्य नहीं सिमट जाता, किंतु यह तथ्य है कि साहित्यिक आंदोलन के रूप में कुछ दूर तक यही वाद चले। वाद विशेष की स्वभावगत एकांगिकता इनमें से हर एक के साथ जुड़ी हुई है, जिसके फलस्वरूप साहित्य रचना में यत्र तत्र विकृतियाँ भी आईं। किंतु इसके साथ ही यह भी तथ्य है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जो भी रूप आज दिखाई पड़ रहा है वह इन्हीं साहित्यिक आंदोलनों के कारण और हिंदी साहित्य की वृद्धि में इसका निश्चित ऐतिहासिक योग है। वस्तुतः ये साहित्यिक आंदोलन हिंदी साहित्य की अपनी परंपरा के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया के एक निश्चित अनुक्रम में उत्पन्न और समाप्त हुए, इसलिए इनके नाम पर ही नहीं बल्कि रूप पर भी हिंदी की अपनी छाप है। हो सकता है कि छायावाद और प्रयोगवाद जैसे नाम दूसरे साहित्य के पाठकों के लिए अर्थहीन हो, किंतु हिंदी में इन नामों का एक निश्चित ऐतिहासिक अर्थ है जो इनके संदर्भ में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार विविध बाह्य प्रवाहों के स्पर्श के बावजूद उन सभी साहित्यिक आंदोलनों में हिंदी का अपना वैशिष्ट परिलक्षित होता है। विलक्षण समीक्षकों ने कहीं कहीं इस वैशिष्ट की ओर संकेत किया है, किंतु स्वीकार करना होगा कि सुस्पष्ट एवं सुव्यवस्थित ढंग से हिंदी के इन वादों के निजी जातिगत वैशिष्ट का निरूपण होना अभिशेष है। यहाँ तक कि अभी छायावाद के हिंदी जातीय वैशिष्ट का तथ्यपूर्ण विवरण सामने नहीं आया है। सहज अनुभव ज्ञान के सहारे आधुनिक हिंदी का कोई भी पाठक देख सकता है कि कुछ बाह्य प्रभावों के अंतर्गत लिखी हुई कविताओं को छोड़कर जो सहृदय हृदय वास्तविक कविताएं हैं उन पर हिंदी काव्य परंपरा की अपनी छाप स्पष्ट है। रोमांटिक प्रवृत्ति के अंतर्गत लिखे जाने पर भी निराला की राम की शक्ति पूजा हिंदी की अपनी रचना है, जिसे पढ़ने के बाद कोई भी यही कहेगा कि यह कविता हिंदी में ही संभव थी और जिसके व्यक्तित्व की स्वतंत्रता विश्व के संपूर्ण रोमांटिक काव्य में आसानी से पहचानी जा सकती है। चूंकि यह विषय अलग से विस्तृत विचार की अपेक्षा रखता है, इसलिए एकाध उदाहरणों के द्वारा इसका संकेत कर देना ही अलम होगा। प्रसंगात हिंदी के हालावाद की चर्चा आवश्यक है। किसी समय पत्रिकाओं में जो एक कोनों से हालावाद की आवाजें आईं, किंतु साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में इस बात को स्वीकृति न मिल सकी। इस बात के साथ मुख्य रूप से बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि संग्रहों की कविताओं का नाम जुड़ा हुआ है। वैसे देखा देखी इस रंग की कुछ और कविताएं भी सामने आईं, किंतु आगे चलकर एक तो स्वयं बच्चन नहीं तो अबा कर ले, दूसरे साथ देने वाले भी नहीं आए और इस प्रकार यह प्रवृत्ति किसी व्यवस्थित काव्य संवेदना का रूप न ले सकी। परंतु यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि एक दूसरी संबंध भावना के स्तर पर तथा यह तथा कथित हालावादी मनोवृत्ति एक दौर के अनेक समर्थ कवियों में पाई जाती है, जिनमें मस्ती का एक और ही आलम है। बच्चन के अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन दिनकर, एक हद तक नरेंद्र शर्मा और यहाँ तक कि सुभद्रा कुमारी चौहान एवं माखनलाल चतुर्वेदी में भी कमोवेश सहज अक्खड़ता फक्कड़ता से मिलती जुलती रोमानियत मिलती है। निश्चित रूप से उन कवियों के काव्य का तेवर छायावादी कवियों से अलग है और बाद में आने वाले प्रगतिवाद से भी इनका स्वर भिन्न दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य के किसी भी इतिहास में इस दौर का स्थान निश्चित है, किंतु किसी संगठित या व्यवस्थितवाद के रूप में इस पर विचार करना संभव नहीं दिखता। यूं भी मस्ती की यह प्रवृत्ति प्रकृतियावाद मुक्त है। श्री विजय देव नारायण शाही ने इस काव्य वृत्ति के लिए जवानी का काव्य नाम सुझाया है और प्रसंगात यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस काव्य प्रवृत्ति पर पहली बार व्यवस्थित विचार उन्होंने ही किया है, परंतु यह संज्ञा अधिक से अधिक वर्णन के लिए ही उपयोगी हो सकती है। कुछ लोग इसे उत्तर छायावादी प्रवृत्ति अथवा छायावाद का परिशिष्ट भी कहते पाए जाते हैं, किंतु इससे उस काव्य प्रवृत्ति की अपनी विशिष्टता का सही बोध नहीं होता। निसंदेह यह काव्य प्रवृत्ति भी हिंदी की अपनी है, किंतु नाम रूप दोनों ही दृष्टियों से अनिर्दिष्ट इस काव्य प्रवृत्ति पर स्वतंत्र रूप से विचार करना फिलहाल संभव नहीं प्रतीत होता। कुछ ऐसी ही व्यवस्था प्रयोगवाद से अलग नई कविता पर भी स्वतंत्र विचार करने के साथ महसूस होती है। इस प्रकार जो विषय प्रस्तुत विचार चर्चा में छूट गए हैं उन्हें निकट भविष्य में विचार के लिए सुरक्षित रखते हुए प्रसंगानुकूलता की जा सकती है। इस पुस्तक के संबंध में सूचनार्थ निवेदन है कि मूल रूप में ये निबंध कई जगहों पर एकाधिक बार व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत हुए थे। मित्रों के आग्रह पर इन्हें आगे चलकर स्वतंत्र निबंधों के रूप में व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। प्रस्तुत संस्करण में मुख्यतः रहस्यवाद एवं प्रयोगवाद के अंतर्गत विशेष परिवर्धन हुआ है। शेष निबंधों में यत्र तत्र कुछ तथ्य और पूर्व संबंधी भूलें ठीक कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम संस्करण की भूमिका के स्थान पर एक नई भूमिका भी जोड़ी जा रही है। यदि इससे साहित्य के विद्यार्थियों की दृष्टि कुछ स्वच्छ हुई है और इन विषयों पर आगे विचार करने की प्रेरणा मिली तो इस संक्षिप्त से प्रयत्न को सार्थक समझूंगा। नामोर सिंह, लोलार्ग कुंड, वाराणसी, जून 1962।